दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस स्टोरी के साथ साथ मैं मेरी 2 से 3 और स्टोरी एक दो दिन में पब्लिश होने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टोरी के साथ साथ आप लोग उन स्टोरी को भी ढेर सारा प्यार देंगे। और डोंट वरी, उन सब स्टोरी में थ्रिलर, रोमांस, सस्पेंस एंड फैंटेसी है। प्लीज़ आप सब लोग अपना साथ बनाए रखना। बैक टू स्टोरी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बेटी, अब तुम पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। तुम्हारे ये दादाजी का वादा है, अब हम सब कुछ संभाल लेंगे। कहीं न कहीं ये कहते हुए दादाजी का गला भर आया था। वहीं आस्था ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी, केवल उन्हें देख रही थी। फिर थोड़ी सी धीमी आवाज में आस्था ने दादाजी से कहा, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते दादाजी, और आपको इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और वैसे भी आपका शुगर लेवल बढ़ गया तो। जैसे ही आस्था ने ये कहा, दादाजी मुस्कुरा दिए और सोचने लगे कि इस बच्चे को अपनी बीमारी में भी मेरी तबीयत की फिक्र है, और मैं इस बच्चे के साथ गलत करने चला था। कहीं न कहीं दादाजी को अपने किए का काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि अगर आज आस्था की जान चली जाती तो शायद वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाते। दादाजी आस्था से बोले, अच्छा बेटा, तुमसे मिलने के लिए सभी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, मैं उन्हें एक एक करके भेजता हूँ, तुम सबसे मिल लो। आस्था बोली, नहीं नहीं, आप एक एक करके मत भेजिए, सबको एक साथ भेज दीजिए, अगर हम एक एक करके सबसे मिलेंगे तो हम थक जाएंगे। आस्था की मासूम सी शक्ल देखकर दादाजी रोते रोते मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है बेटा। ऐसा कहकर दादाजी बाहर आकर सबसे कहा, अब तुम सब भी जाओ और आस्था से मिलो, और हाँ, सबके सब एक साथ जाना, एक एक करके अगर अलग अलग आस्था से मिलोगे तो वो थक जाएगी। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वे पांचों एक दूसरे की शक्ल देखकर मुस्कुरा दिए। जल्दी ही अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए वे तुरंत अंदर चले गए। तब आस्था ने बारी बारी से उन सबको मुस्कुराते हुए देखा, अरमान वहां नहीं था। कहीं न कहीं अरमान को वहां ना पाकर आस्था को दिल में कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन अगले पल अपनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो उन सब की ओर देखने लगी। आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और देव पांचों उसके सामने मौजूद थे। तब आस्था आकाश की ओर देखकर बोली, आकाश भैया, आप ठीक है ना? हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको कमरे में लॉक कर दिया था। वो एक्चुअली हम तो बस ये चाहते थे कि आप और वो। अभी आस्था सीधे सीधे सबके सामने रश्मि और आकाश के बारे में बताने वाली थी कि आकाश बीच में बोल पड़ा, नहीं नहीं आस्था प्लीज, तुम्हारी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इस हालत में तुम ज्यादा मत बोलो। कहीं न कहीं आकाश नहीं चाहता था कि सबके सामने उसके और रश्मि की बातें हों, इसीलिए उसने तुरंत आस्था को आगे बोलने से रोक दिया, और आस्था भी अब आकाश की बात समझकर चुप हो गई। तब जल्दी से ध्रुव आगे आया और बोला, आस्था भाभी, आप ठीक हो ना? आहान भी फिक्र भरी आवाज में कहता है, भाभी आप ठीक है ना? अचानक आहान ये कहते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। जैसे ही अचानक आहान ने रोना शुरू किया, ध्रुव भी खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू निकलना शुरू हो गए। एकदम से ही पूरा का पूरा माहौल काफी ज्यादा इमोशनल सा हो गया। देव की भी आंखें भर आई थी, केवल सुमित और आकाश सपाट चेहरे के साथ उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे और बोले कि आस्था की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसके सामने हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, इससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। तब आस्था उन सबको अपने लिए इतना फिक्र करते हुए देखकर रोने लगी, क्योंकि उसकी जिंदगी में प्यार करने वाला सिर्फ और सिर्फ उसकी नानी माँ ही थी, लेकिन आज इन सब लोगों को अपनी आंखों के सामने देखकर, इस तरह से आस्था की फिक्र करते हुए देखकर आस्था को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट उसकी आंखें आंसू बहाने के लिए तैयार थीं। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि उसे एक अलग ही तरह की फैमिली मिल गई हो। तभी आस्था उन सबका मूड थोड़ा सा ठीक करने के लिए बोली, अरे अरे क्या हुआ आप लोगों को, आप इस तरह से गंगा जमुना क्यों बहा रहे हैं? अरे हम मरे थोड़ी ना है, हम तो जिंदा है, एंड आई डोंट वरी, जब तक हम आप सबकी शादियों में भांगड़ा नहीं कर लेते हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। जैसे ही आस्था ने थोड़ी सी मासूम सी शक्ल बनाकर इस तरह से बोला, वे सभी इमोशनल फेस के साथ मुस्कुरा दिए, और तब सुमित आगे बढ़ा और आस्था के सर पर हाथ रखकर बोला, मुझे लगता है अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। ऐसा कहकर वे लोग एक एक करके वहां से चले गए। वहीं आस्था अब उस रूम में अकेली थी और आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सोचने लगी। उसे ये तो हल्का हल्का याद था कि अरमान उसका गला दबा रहा था, यहां तक कि अरमान ने उसे थप्पड़ मारा भी था, लेकिन उसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिरकार अरमान ने उसके साथ ये सब क्यों किया था, उसने ऐसी क्या गलती की थी जो अरमान ने उस पर हाथ उठा दिया। क्योंकि आस्था भी दवाइयों के नशे में ही थी तो एक बार फिर उसकी आंखें बोझल हो गईं और वो गहरी नींद में सो गई। वेल, डॉक्टर रश्मि ने अच्छी तरह से आस्था के सारे रिपोर्ट वगैरह चेक कर ली थी और दादाजी को सीधा रिपोर्ट की थी और तसल्ली देते हुए बोली कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, शाम तक आस्था को हम डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन अभी उसे 4 से 5 घंटे और अस्पताल में ही रहना होगा। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, दादाजी बोले, लेकिन बेटा उसकी हालत तो काफी अभी खराब लग रही है, और अगर आप शाम को डिस्चार्ज करने के लिए क्यों बोल रही हो? तब डॉक्टर रश्मि बोली, वो दादाजी, एक्चुअली मैं आस्था को घर भेजने के लिए इसलिए कह रही हूँ, अगर हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में आस्था रहेगी तो इससे उसके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, तो बस इसीलिए मैं घर ले जाने के लिए बोल रही हूँ।
जैसे ही रश्मि ने ये कहा, दादाजी बोले, लेकिन बेटा अगर घर पर उसकी तबीयत खराब हो गई तो? नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे भी वो मेरी बहू नहीं, बेटी है। बेटी रश्मि, बेटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? दादाजी ने ये कहा। रश्मि हैरानी से बोली, जी दादाजी, आप हुक्म कीजिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। आपने बचपन से मेरी देखरेख की है, वरना हम अनाथ का जीवन तो कब का खत्म हो चुका होता। सिंघानिया परिवार की तरफ से जो ऑफरेज चल रहे थे, उनमें से एक ऑफरेज में से डॉक्टर रश्मि पली बढ़ी थी। जब डॉक्टर रश्मि 10 साल की थी, उन्हें एक श्रीवास्तव फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो फैमिली भी कुछ ही सालों के बाद एक्सीडेंट में गुजर गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर रश्मि एक बार फिर अकेली हो गई थी और वापस से उन्हें अनाथाश्रम में जाकर रहना पड़ा था। तब दादाजी ने डॉक्टर रश्मि की पढ़ाई लिखाई, साथ साथ उसे डॉक्टर बनने की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी पढ़ाई शहर के बेस्ट स्कूल में करवाई थी, जिसमें अरमान भी पढ़ा करता था। तब से अरमान रश्मि के क्लासमेट थे। वेल, दादाजी की बात सुनने के बाद डॉक्टर रश्मि ने तुरंत उनके हाथों को पकड़ा और बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दादाजी, मैं जरूर सिंघानिया मैंशन में आकर रहूंगी, और जब तक आस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं उसी के साथ रहूंगी। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने कहा, दादाजी ने उसके माथे को चूम लिया था, उसको ढेर सारे आशीर्वाद दिए। डॉक्टर रश्मि फिर बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना सामान लेकर आज ही सिंघानिया मैंशन शिफ्ट हो जाऊंगी। तभी दादाजी बोले, आप सामान की फिक्र मत कीजिए, हमने ऑलरेडी आपकी जरूरत का सारा सामान सिंघानिया मैंशन में ऐड करवा दिया है, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी बेटी हमारी रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं करेगी। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, रश्मि प्यार से मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, मैं आस्था को डिस्चार्ज के बाद ही घर ले आऊंगी, तब तक आप लोग भी घर जाकर आराम कर सकते हैं, मैं हूँ यहाँ पर, मैं उसका ख्याल रखूंगी। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, सब मुस्कुरा दिए।
और तभी ध्रुव आगे आया और दादाजी को देखकर बोला, दादाजी, हम सब चाहते हैं कि हम भाभी का एक बार फिर अच्छे से स्वागत करें, तो प्लीज चलिए हम घर चलकर भाभी के वेलकम की तैयारी करते हैं। वहीं अरमान, जो कि एक तरफ बैठा हुआ था, ये सब कुछ देख सुन रहा था, लेकिन आज सब उसे इग्नोर कर रहे थे। वहीं देव भी ध्रुव और आहान के साथ जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अरमान पर पड़ी तो वो तुरंत आकर अरमान के साथ खड़ा हो गया। तब अरमान ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम भी उन लोगों के साथ जा सकते हो, मैं डॉक्टर रश्मि को लेकर घर आ जाऊंगा। जैसे ही अरमान ने ये कहा, देव भी जल्दी जल्दी अब आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान दादाजी के साथ में सिंघानिया मैंशन चला गया। वहीं डॉक्टर रश्मि ने बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ सामने बैठे हुए अरमान को देखा और उसके ठीक बराबर में आकर बैठी और बोली, अरमान, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारी बीवी को एक पैनिक अटैक आया है, और अगर ये अटैक उसे एक बार फिर से आया तो शायद हम उसकी जान ना बचा पाए। कुछ तो ऐसे जख्म दिए हैं जिंदगी ने उसे, जिसकी वजह से उसे इस तरह के पैनिक अटैक आया है। मैं नहीं जानती कि तुम आस्था को पसंद करते हो या नहीं करते हो, या उसकी हालत ऐसी क्यों है, लेकिन ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा ये बिहेवियर उसकी जान ले सकता था, और अरमान, अपनी गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। जैसे ही रश्मि ने अरमान को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, तब अरमान उसकी ओर एरोगेंट लुक में देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? मुझे लगता है तुम्हें जाकर अपना काम फिनिश करना चाहिए, और वैसे भी 5 बजने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। मैं हूँ यहाँ पर, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। जैसे ही अरमान ने बड़े ही रूखे सूखे शब्दों में डॉक्टर रश्मि से बात की, अब रश्मि वहाँ से उठकर खड़ी हो गई थी और वो सोचने लगी, इसीलिए आकाश भी अरमान सिंघानिया के साथ रहते रहते उसकी तरह का हो गया है, वरना कभी आकाश ऐसा नहीं था। वेल, जल्दी ही रश्मि अपने केबिन में चली गई थी, वहीं पूरे 3 घंटे तक अरमान सिंघानिया इस वार्ड के बाहर सामने बैठा रहा। आज उसके हाथ में ना लैपटॉप था ना ही फ़ोन, वो सिर्फ और सिर्फ एकटक उस वार्ड की तरफ ही देखे जा रहा था, जिस वार्ड में इस वक्त उसकी बीवी आस्था सिंघानिया थी। वेल, पूरे 2 से 2.5 घंटे के बाद अच्छी तरह से सभी मरीजों का रेगुलर चेकअप करने के बाद रश्मि वहाँ आ गई थी और अरमान से बोली, मैं एक बार जाकर आस्था को चेक कर लेती हूँ, उसे होश आया है या नहीं आया है। अगर उसे होश आ गया होगा और उसकी तबीयत बेटर रही तो हम उसे घर ले जा सकते हैं, एक बार मैं उसे चेक करके आती हूँ। ऐसा कहकर 2.5 से 3 घंटे बाद डॉक्टर रश्मि जैसे ही आस्था के केबिन में गई, उसने देखा कि आस्था ने ऑलरेडी अपने हाथ की नीडल निकाल दी थी और खुद से खड़े होकर अब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। अब डॉक्टर रश्मि हैरान हो गई और बोली, आस्था, ये क्या कर रही हो तुम, और ये क्या किया तुमने? तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम खुद से चलकर जा सको, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तब आस्था डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर बोली, वो रश्मि दीदी, हम यहाँ अस्पताल के माहौल में नहीं रह पाएंगे, हमें यहाँ से जाना है, हम यहाँ नहीं रह सकते, अगर हम यहाँ रहे तो हमारा दम घुट जाएगा। अब रश्मि आस्था की इस तरह की बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि को याद था जब आस्था उसे पहली बार मिली थी तब आस्था ने उसे बताया था कि वो भी डॉक्टर रश्मि की तरह डॉक्टर बनना चाहती है, तो फिर इस तरह से वो अस्पताल को देखकर कैसे घबरा सकती है। तब रश्मि ने उसे शांत करने की कोशिश करने लगी और बोली,
आस्था, तुम शांत हो जाओ, किस बात से घबरा रही हो? तुम तो खुद डॉक्टर बनना चाहती हो, तो फिर इस तरह से हॉस्पिटल के माहौल को देखकर तुम कैसे घबरा सकती हो? तभी आस्था ने गहरी लंबी सांस लेते हुए डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर बोला, हाँ ये बात सच है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनने के लिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर नहीं बन जाते तब तक हम मरना नहीं चाहते हैं। जैसे ही आस्था ने ये कहा तो डॉक्टर रश्मि पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार आस्था कहना क्या चाह रही है, और उसने अपने सर पर हाथ मार लिया था और आस्था की ओर देखकर बोली, ओ गॉड आस्था, मेरी जिंदगी में आज तक कितने ही पेशेंट आए हैं, कितने लोगों से मैं मिली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ही समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार तुम हो क्या। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी कि आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो, कहना क्या चाहती हो, तुम्हें यहाँ से कहाँ जाना चाहती हो? शायद तुम भूल रही हो, तुम फेमस बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की वाइफ हो और तुम्हें सिंघानिया मेंशन जाना है, और दादाजी ने मुझे तुम्हारे लिए 24 आवर हायर कर दिया है, तो मैं भी तुम्हारे साथ सिंघानिया मेंशन चल रही हूँ। जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आस्था बोली, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें मेंशन नहीं जाना है, हमें वापस अपनी नानी माँ के पास जाना है, अब आप हमें जाने दीजिए। ऐसा कहकर बिना रश्मि की कोई बात सुने आस्था धीरे से छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगी, और जल्दी ही आगे जाकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो तुरंत किसी से टकरा गई थी, क्योंकि आस्था अभी भी और जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। जब काफी देर हो गई आस्था और रश्मि बाहर नहीं आई, तो अरमान उन्हें देखने के लिए जैसे ही उस वार्ड के अंदर जाने लगा तुरंत आस्था उससे टकरा गई, और अरमान ने तुरंत उसे पकड़ लिया था और उसे गिरने से बचा लिया था। अब अपने सामने अरमान को देखकर आस्था थर थर कांपने लगी थी।